ஓம் நம சிவாய. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர்க், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூ ஆர் அபவுட் டு லிசன் புஷ்பதன்ஸ் சிவ மஹிம ஸ்தோத்ரா இன் ஹிந்தி, ப்ரெசன்டட் பை சுவாமி நிஷ்தானந்தஜி சரஸ்வதி. தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
आप क्या हमें समझा रहे हैं? भोजन तो आया नहीं, तो भाई आपके प्रारब्ध में कल भोजन ही नहीं था. आज जंगल में गए होते तो थाली लेके कोई आता था. हाँ, ये प्रारब्ध का सिद्धांत है. कहने का तात्पर्य क्या है कि देखिए, प्रारब्ध में जितना धन है, जिसकी जितना धन प्रारब्ध में, वो जाने दीजिए. आपको जब जितनी आवश्यकता है वो आपको मिल जाएगा. हाँ, आपको जितना आयुष्य की जरूरत है आयुष्य मिल जाएगा. आयुष्य के लिए भी कोई चिंता मत कीजिए. आपको जितने पुत्र की जरूर है या न पुत्र की भी जरूर है, उसको लेट हिम डिसाइड. हाँ, इज द बेटर जज. और उनकी इच्छा से कुछ हो गया तो उसका ध्यान भी वही रखेंगे, आपके ऊपर कोई जवाबदारी नहीं आएगी. और कीर्ति जो, प्रतिष्ठा जो, यानी तीनों ऐषणा जो है, परमात्मा का नाम लेंगे तो ये तीनों ऐषणा का भार जो है वो परमात्मा ही उठा लेंगे. हमें सिर्फ ये स्तवन, ये स्तोत्र, ये कवन करना है. ये होता है कि नहीं, इस प्रकार देखने के लिए भी आप थोड़ी क्षणों के लिए छोड़ देना और देखना, ये आपके अनुभव की बात बनेगी. हमारा यहाँ 100 बार बताने से भी कुछ नहीं होगा. कहते हैं, महेश्वर से श्रेष्ठ कोई देव नहीं है, महिम्न से श्रेष्ठ कोई स्तुति नहीं है, और अघोर जो मंत्र है उससे श्रेष्ठ कोई मंत्र नहीं है. ऐसा कहते हैं. देखिए, कभी ये परमात्मा को प्राप्त करने के लिए निकले हैं, पर जरूरी नहीं. गुरु तो 24 घंटा नहीं रह सकता, साथ बोल नहीं सकता, तो बीच में कभी ऐसे प्रसंग आ जाते हैं, हमें डर भी लगता है, भय भी लगता है, तो भाई क्या करना. तो तब ये जो मंत्र है वो मंत्र का पाठ आपको दिया जाता है. अघोर, घोर याने पूरा तमस, अंधकार. और अघोर, जहाँ घोर नहीं है, जहाँ क्लेश नहीं है, जहाँ अविद्या नहीं है, अंधकार नहीं है. अघोरेभ्यो थगोरेभ्यो घोर घोर तरेभ्यः सर्वेभ्य सर्व सर्वेभ्य भगवान विश्वरूपेभ्यः. ये मंत्र दिया जाता है. ये मंत्र आप कीजिए तो जैसे सर्प काटता है, तो सर्प दंश निवारण का जो मंत्र है, वो मंत्र, वो जो जिसको सर्प काटा है उसे न जाना होता है मंत्र, उसका अर्थ उसे न पता लगने पर भी डंस जो है, जो जहर जो है, वो निकल जाता है. ऐसे ये मंत्र का अर्थ भी अगर नहीं पता है, ये मंत्र किसके लिए प्रयोजन किया है वो महादेव का भी हमें ज्ञान नहीं है, तो कोई बात नहीं. मंत्र का उच्चारण भी है वही काफी है. जो ईश्वर सचराचर व्याप्त है उसकी इतनी तो महिमा होगी ना कि नाम ही काफी हो जाएगा. हाँ, अर्थ नहीं समझे, नहीं तो वो ईश्वर कैसा. सब समझ में आएगा तो समझ में आ ही जाएगा कि वो परमात्मा मैं हूँ. न समझ में आने पर भी कोई असर दिखला देगा तो उसका नाम है ईश्वर. और ये जो चमत्कार है वो यही हो सकता है. और यही जीवन का सबसे श्रेष्ठ चमत्कार है कि मन और वाणी का विषय नहीं है, उसे मन और वाणी को पहुंचाने की हम चेष्टा कर रहे हैं. और इसमें जो चेष्टा अधूरी रह जाती है, वो जो गुरु शास्त्र की जो कृपा है, आत्मा की जो कृपा है, ईश्वर की जो कृपा है, वो ये जो डिस्टेंस जो है, ये जो जगह जो है, वो परमात्मा उसे पूरी कर देते हैं. हमें पता ही नहीं लगता. हम बड़े बड़े ये सब जितने बड़े मैकेनिकल प्लांट जो चल रहे हैं, इंडस्ट्रीज जो चल रही है, आपको पता है उसमें जीरो एरर तो है ही. वो एरर कौन भरता है? वो मशीन में, सब क्लॉक में, जितना भी मशीन से काम चल रहा है उसमें एरर है ही. वो एरर की पूर्णी कौन कर रहा है? कौन अदृश्य तत्व कर रहा है? इवन योर क्लॉक इज नॉट दैट प्रिसाइज. ये क्लॉक से आपने शुरू किया प्लांट का काम, पर देश और काल से क्लॉक बदल भी जाता है. तो क्लॉक बदलता है, एक सेकंड, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड यहां से यहां हो जाती है, तो भी आपका प्लांट ऐसे ही चलना है. तो ये जो बीच वाली जो घड़ी है, जिसका जो ह्यूमन एरर जो है वो आप करेक्ट नहीं कर सकते, वो करेक्ट कौन कर रहा है? क्षण क्षण में वो, अगर वो करेक्शन न हो ना तो आप कुछ नहीं कर सकते. आपको बैलगाड़ी में चलना पड़ेगा. इवन यू कांट कंट्रोल अ पेट्रोल पंप प्लांट. वो सब मशीन से, सब कंप्यूटर में चलता है, पर वो जो एरर का करेक्शन जो है वो परमात्मा कर रहा है. हाँ, ये पूर्णी जो है वो परमात्मा कर रहा है. तो हे परमात्मा, आपको जानने के लिए जितना खींच सके उतना मन बुद्धि वाणी में ले जाता हूं, थोड़ी जो पूर्ति है वो आप कर दीजिए, पर हमारी जो मन बुद्धि वाणी जहां तक हम ले जाते हैं ना, वो 100% होनी चाहिए। इसीलिए हम लोग यहाँ आते हैं, ये प्रवचन से इतना ही बताना है कि ये जो है एफर्ट्स जो रखनी है वो पूरी 100% रखनी है, वहां इधर से उधर नहीं होगा, यहाँ एक चीज भी नहीं चलाई जाएगी। हाँ, तो ये ऐसा कहा है, ये अघोर मंत्र है। दीक्षा दानम तपस्तीर्थम, अब क्या कहते हैं कि ब्रह्मचर्यादि आदि अनेक दीक्षाएं हैं, गाय पृथ्वी सुवर्ण का अनेक दान कहा गया है, दान की भी महिमा है, कृष्ण चांद्रायण व्रत जैसे अनेक व्रत और तप है, काशी पुष्कर आदि अनेक तीर्थ जो है, तीर्थ यात्राएं कही गई है, शास्त्रीय ज्ञान यज्ञ यागादि जो क्रिया है उसका, उसमें से कोई भी महिम्न स्तोत्र जो है उसकी बराबरी नहीं कर सकता है। तो क्या ये सब हम करना छोड़ दे? बोले ये सब करना छोड़ना नहीं है, ये अवश्य चित्त शुद्धि के साधन है, पर सबकी ऐसी अवस्था नहीं होती कि तीर्थ कर सकते हैं, सबकी ऐसी अवस्था नहीं होती कि दान कर सकेंगे, शास्त्र पढ़ सकेंगे। भाई सबकी बुद्धि इतनी सूक्ष्म नहीं होती कि शास्त्र के इतने जो नहीं, अभी जहत अजहत लक्षण नाम सुन के ही कैसा हो जाता है, नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं। अगर आप यहाँ क्या कहा है कि दान करना तो श्रेष्ठ है, पर दान नहीं कर सके तो ये कर, एटलीस्ट महिमा कीजिए, तप नहीं कर सके तो ये कीजिए। हम जब ये बताते हैं कि ये सबकी जरूर नहीं है तो हम ये भी रख देते हैं और यही नहीं करते हैं, उससे तो अच्छा है कि दान जप तप याग यागादि तीर्थ सब कुछ कीजिए। पर यहाँ हमारे ऊपर कृपा की है कि ये सब करने में आपको समय नहीं है, ऐसी अवस्था नहीं है शरीर की कि आप ये सब कर सके, तो घर बैठ के ये पाठ किया तो भी पर्याप्त है, ऐसा कहते हैं। ये पाठ परमात्मा की वो 16वीं जो कला जो है, पाठ की जो 16वीं कला है, उस तक कुछ भी यज्ञ यागादि पहुंच नहीं सकते, ऐसा कहा है। अब कहते हैं स्तोत्रकार का नाम निर्देश किया है, कुसुम दशन नामा सर्व गंधर्व राजह, पुष्पदंतक नामक सब गंधर्वों के राजा, चंद्र की कला जिसके मुगुट में है, और जो महादेव के सेवक है, ये जो पुष्पदंत गंधर्व थे ना वो महादेव के सेवक थे, गण थे, वो गंधर्व महादेव के क्रोध से अपने प्रताप से भ्रष्ट हुए थे। कल जो बात की ना, परमात्मा के गण अपने साथ क्या रखते हैं, स्मरहर पिशाचा सहर सहचरा, तो ऐसे परमात्मा के श्रेष्ठ गण थे, सहचर थे, पर कोई पाप से भ्रष्ट हुए थे। परमात्मा ही भ्रष्ट करते हैं पाप से, क्यों भ्रष्ट करते हैं, क्योंकि परमात्मा को वो जो उसका, हमने कहा ना कि एक कर्म भी बाकी रह गया तो तकलीफ होगी, तो यहाँ एक कर्म भी जो बाकी रह गया तो परमात्मा उससे भी पुष्पदंत को छुड़ाना चाहते थे, इसीलिए ये गंधर्व की योनि, गण से तो गंधर्व की योनि कम ही है ना परमात्मा के गण से, तो इसीलिए गंधर्व की योनि दी, बोले कि तू मुझसे ये दूर रह के गंधर्व की योनि को भुगत के ये जो तेरे पाप कर्म जो है वो आप समाप्त कर दो, फिर से आपको मैं आपके गण के रूप में मैं ले लूंगा। तो कहे कि आपने प्रताप से भ्रष्ट करके पुष्पदंत को कृपा ही की है, इसीलिए वो परम दिव्य महिम्न, देखिए ये परम दिव्य महिम्न ऐसे भ्रष्ट नहीं होते, गंधर्व राज नहीं बनते, तो ये दिव्य महिम्न बनाने की चेष्टा नहीं करते, ये समझ में आया, और इसीलिए ये उनके भीतर भक्ति और ज्ञान का समझना क्या है कि कभी हमको ऐसा लगता है कि हम ये गुरु की इतनी सेवा करते हैं, हम इनके लिए इतना करते हैं, हम इतनी भगवान की भक्ति करते हैं, तो मेरे ही साथ ऐसा क्यों हुआ, हा? परमात्मा का उपकार मानिए कि आपके ही साथ हुआ, भाई परमात्मा ने ही मेरे साथ ऐसा क्यों किया, वो रासलीला में होता है, रुक्मिणी जी है उनकी जो नथ जो है, हाँ जो ऑर्नामेंट है नाक की नथनी, वो गुम हो जाती है, किसने गुम की, तो बोले कृष्ण परमात्मा ही गुम की, क्यों गुम की, तो नरसिंह मेहता जी गए थे ना रासलीला देखने के लिए, तो रुक्मिणी जी के मन में थोड़ा कम भाव आ गया, कैसा भाव आ गया कि अरे ये पृथ्वी लोक का मनुष्य लोक का जो है व्यक्ति, ये जीव, ये कैसे मेरे प्रभु के दर्शन कर सकते हैं, मैं ही हूँ ज्ञानी, मैं ही पवित्र हूं और मैं ही दर्शन करने योग्य हूं, मैं ही अधिकारी हूं, इनका अधिकार कहां? ऐसा गुमान आ गया तो क्या हुआ? परमात्मा ने तुरंत वही क्षण, देखिए एक बात याद रखना, ये जो गुरु है, गुरु रूपी परमात्मा है, कोई मुहूर्त नहीं देखते तोड़ने काटने के लिए। जिस क्षण दिखा उसी क्षण उसका पार, क्योंकि रासलीला है, पूरे जितने अधिकारी हैं सब इकट्ठे हुए हैं ना गोपियों के रूप में, वो सब देवी देवता ही थे, इतने सारे मौजूद थे, प्रकृति भी मौजूद थी। हाँ, प्रकृति यानी जो चंद्रमा थे, वायु देव थे, सब कोई मौजूद थे वहां, और इन सब की प्रेजेंस में, हाँ, इन सब की उपस्थिति में कृष्ण भगवान ने ऐसा नहीं सोचा कि रुक्मिणी जी ने कोई कम तप नहीं किया होगा कि कृष्ण परमात्मा की पत्नी बन के आए, हाँ अतिशय तप किया होगा कि इतना नित्य सानिध्य मिला, तो वो कोई कम अधिकारी नहीं थे, इतने श्रेष्ठ थे, तो भी इतनी श्रेष्ठ रुक्मिणी को इतने लोगों के बीच में अपमानित करूंगा तो क्या होगा? जो होगा वो, मेरे शरणागत, मेरे शरणागत का इतना भी बुरा मैं नहीं देख सकता, कृष्ण परमात्मा ने कहा, क्योंकि रुक्मिणी जी का ये भाव मुझसे उन्हें दूर कर देगा, ये डर लगा। परमात्मा इतने कृपालु होते हैं, आपको शरणागत, आपको उपस्थिति होना है, और इस भर सभा के बीच, पर बुरी रासलीला के बीच, नरसिंह मेहता जी के बीच, शिव जी भी आए थे वहां, और उसके बीच उन्होंने ये नस उनकी गुमा दी, और उनको माने कि यू नो मान हानि की है, गुमान जो है वो वही क्षण निकाल दिया। तो यहां है कि आपको जो पद भ्रष्ट किया, इसी लिए आप ये स्तोत्र की रचना कर सके। तो इसी प्रकार कहते हैं कि जब भी कोई भी गुरुजन, कोई भी परमात्मा का ऐसा कोई भी कर्तृत्व जो हमें अच्छा नहीं लगे, भाई अभी कहना जरूरी क्या था, हम इतनी सेवा करते हैं, हम इतना ध्यान रखते हैं, तो भी इसका सुनना पड़ता है, इसीलिए सुनना पड़ता है, सेवा नहीं करनी है तो नहीं करना पर अगर सेवा करेंगे, अगर ध्यान रखेंगे गुरु का, तो ये सुनना ही पड़ेगा। क्यों सुनना पड़ेगा? आपके उद्धार का। देखिए जो जैसा होता है वो उसी को, यू नो पानी के साथ पानी ही मिल सकता है ना, अब ऑयल डाल दिया तो वो तो तरेगा और किनारे पे जाके छूट जाएगा। पानी से मिलना है तो पानी, तो पानी क्या करता है, पानी अपने स्वभाव को, नदी को ही अपने में आकर्षित करता है समुद्र, क्यों? क्योंकि भले मीठा है पर जल तत्व है, मिल जाएगा। तो आपका स्वभाव कैसा भी हो, एक भी चीज, एक भी विचार, एक भी गलत विचार आपको आया तो तत्क्षण वही क्षण उसका खंडन किया जाएगा। हमें क्या करना है? बिना अहंकार हमें सिर्फ उपस्थित रहना है और ये याद रखना है कि कुछ अच्छा मेरे जीवन में होने वाला है, इसीलिए ऐसा हुआ है। शुरुआत में पुष्प दंत जी ने जो दंत कथा कही थी वही ये श्लोक से मिलती है, यानी ये जो कथा जो है पुष्प दंत जी की स्तोत्र है, ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है, ये प्रसंग हुआ है, ऐसा वेद और शास्त्र और ऋषि मुनि ऐसा विधान देते हैं, साक्षी देते हैं। स्तोत्र की महिमा कहते हैं आसमाप्तम इदम स्तोत्रम करके, कि ये जो स्तोत्र है वो शुरू से अंत तक पवित्र है, अनुपम है, मनोहर है, मांगलिक है। महादेव जी के वर्णन रूप ये गंधर्व रचित स्तोत्र अब समाप्त होता है। स्तोत्र पाठ के अंत जो हमने प्रार्थना की, इत्येषा वाङ्मयी पूजा श्रीमद् शंकर पादयोः अर्पिता तेन देवेशः प्रियताम् मे सदाशिवः, ये जो वाङ्मयी पूजा जो है श्रीमद् परमात्मा शंकर के चरणों में मैंने अर्पण की है, ये पूजा से देवादिदेव शंकर मेरे ऊपर प्रसन्न हो। यानी यहाँ क्या कहा है कि आपके पास कुछ भी श्रेष्ठ हो, आपका ही हो, है ही तो पुष्पदंत जी की ही बुद्धि, उन्हीं का स्तोत्र है, यू कैन नॉट डिनाई दैट। फिर भी क्या होता है कि मेरा जाने के मेरा ये नहीं है, ऐसे मैं आपको समर्पित करता हूँ। हमारे पास कितनी भी हमारी विद्या हो, हमारे गुण हो, हमारे पास कुछ भी सराहनीय हो, जो वखान करने लोग योग्य हो, वो क्या है, वो सब कुछ भले ही हमारा हो फिर भी उसके लिए दीन भाव रख के चलिए, उसके लिए दीन भाव होना चाहिए कि नहीं ये आपका ही है। और ये खाली मुख का भाव नहीं चाहिए, अरे सब कुछ आपका ही है, नहीं, ये भाव की परमात्मा को आवश्यकता नहीं है, हृदय से वो लगना ही चाहिए। ये क्या है, हमारा ही अहंकार कम होता है और जीरो अहंकार हो गया तो परमात्मा प्राप्त ही है, यही है। स्तोत्र के अंत में कहते हैं, श्री पुष्पदंत के श्री पुष्पदंत मुख पंकज निर्गते न, ये स्तोत्र के पाठ से शंकर भगवान की प्रसन्नता कैसे हुई, तो गुरु की प्रसन्नता ऐसे हुई, श्री पुष्पदंत के मुख कमल में से निकले हुए पाप को हरण करने वाले और शंकर के प्रिय ये स्तोत्र को मुखपाट करके समाहित रह के, यानि सावधान चित्त से मुखपाट करके, यानी सावधान चित्त से। देखिए ये एक मन के चांचल्य को दूर करने का प्रकार है, काय वांग मनः कार्यमुत्तमम् पूजनम जपश चिंतनम क्रमात्। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए आपको तीन प्रकार के आदेश दिए जाते हैं, कैसे, तो भाई काया रूपी पूजन कीजिए। काया रूपी पूजन क्या क्यों विधान किया है, क्योंकि काया से जब पूजन करेंगे तो हाथ फूल हार चढ़ाने में लगेंगे, आंख से देखेंगे तो कहेंगे परमात्मा के सर पे पुष्प चढ़ाया है, पेट पे चढ़ाया है, कहां चढ़ाया है, तो आंख परमात्मा को देखती रहेगी तो दूसरी चीजों को नहीं देखेगी। पर्पस क्या है, कान जो है मुख से परमात्मा का नाम बोलते हैं, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम प्रद्युम्नाय नमः, तो मुख से बोलते हैं ना, तो मुख कोई और कुछ नहीं बोलेगा। ये तो पूजा करते करते वो दूध चढ़ा दे, चलो वो पेपर वाला आ गया, इसका फोन आ गया, उसको बोल दे मैं अभी पूजा कर रही हूं, नमः नमः, ऐसा नहीं चलेगा। काया से, पूजन से, और कान जो है आप जो बोलते हैं उसी को सुनना है कान में। पूजा करते वक्त, हाँ मोबाइल का अच्छी बात बताई, वो मोबाइल को क्या करते हैं पता है, पूजा करते वक्त केशवाय नमः, हाँ भाई मेरे मोबाइल आया ना अभी, तू स्पीकर ऑन कर दे, वो मोबाइल में लाउड स्पीकर होता है ना, तो स्पीकर ओम केशवाय नमः, और यहाँ से वो बोलती रहती है, जो भी फोन है वो एक लड़की लेके आपको फोन ऐसा रखती है और आप वो केशवाय नमः करते, ऐसा नहीं, जो बोला गया वही कान में जाना चाहिए, तो जो श्लोक मुख से बोलते हैं वही कान में जाए। ये पूजा की विधि, ये हमें बांधा है पूजन की विधि देके, ये कोई ऐसी नहीं, दो सेकंड दो क्षण के लिए पूजा कीजिए पर पूरी ऐसे ही पूजा कीजिए। तो यहाँ क्या कहा है कि समाहित होके सावधान होके, तो ये पूजा के नियम आपको दिए गए हैं, क्योंकि और सब चीज से थोड़ी क्षण के लिए परमात्मा के ऊपर मन एकाग्र हो, एकाग्र चित्त जब होता है तब जो शाश्वत शांति आपको चखने मिलती है वो संस्कार बन जाते हैं, और वो ही संस्कार आपको दोबारा पूजा करने के लिए प्रवृत्त करते हैं, इसीलिए ये कहा है। फिर इसमें ये जो शांति है बिना पूजा आप प्राप्त करने के लिए, आप अधिकार बढ़ेगा तो बिना पूजा, बिना भगवान की मूर्ति, बिना चंदन किए, बिना फूलहार चढ़ाए भी आप समाहित होंगे, तब आपको वाणी का तप बोला जाएगा कि भाई वाणी से सिर्फ परमात्मा का नाम ले लिया, माला कर ली तो आपके लिए ठीक है, क्योंकि उसमें भी मन आपका शांत होता है। अच्छा, माला करे बिना भी आप ऐसे ही शांत बैठ सकते हैं, तो आपको निधि ध्यासन तप दिया जाता है। मैं कहती हूँ ना, भाग्यशाली है कि सब कुछ दे दिया है हमें, तो ये निधि ध्यासन कब दिया जाता है, ये मानसिक तप है। मानसिक तप में भी सरल चिंतनम विरल तप परम, विजातीय वृत्ति प्रवाह को तिरस्कार करके सजातीय वृत्ति प्रवाह से, सजातीय वृत्ति प्रवाह यानी एकमात्र ब्रह्म के जो स्वरूप लक्षण है, ब्रह्म के स्वरूप लक्षण का एक तानत्व में तद्दी निधिध्यासनम उच्यते, एक तानता से, एकाग्रता से चिंतन किया। अच्छा, उसमें भी आप सक्षम हो गए, चिंतन करने के बाद जो आनंद है, जो निर्गुण निराकार जो क्षण है जिसमें कोई देह भाव नहीं है, मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, फिर भी आप जागृत जिंदा है, ये सब कुछ है और आप जाग रहे हैं, वैसी क्षण बिना निधि ध्यासन किए आ जाए उसे समाधि कहते हैं। उसमें भी सविकल्प समाधि है, निर्विकल्प समाधि है। सविकल्प समाधि यानी वो समाधि बीच बीच में टूट के, तार टूट टूट के फिर से लगाना पड़ता है। और निर्विकल्प समाधि क्या है, निर्विकारतया वृत्तिया, विकारहीन वृत्ति विकार कैसे है? निर्विकार यानी साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी, राग द्वेष नहीं चाहिए। ऐसी विकार निर्विकार स्थिति है उसको ब्रह्माकार बनानी है सजातीय वृत्ति से, अखंडाकार वृत्ति से। अखंडाकार यानी आकार का खंड नहीं हो, मेरा मुझसे किया हुआ, मेरा ही चिंतन मुझसे किया हुआ, मेरे द्वारा किया गया चिंतन, इसमें आकार अखंड रहता है, ये अखंड आकार वृत्ति है। देखिए कोई मूर्ति है तो वो देव है, आराध्य देव है, उपास्य है, मैं उपासक हूं और हम दोनों के बीच में क्या है, उपासना चल रही है, ये त्रिपुटी बन गई तो अखंड आकार वृत्ति, वृत्ति टूट गई। हाँ, यहां तो वृत्ति भी नहीं तोड़नी है, आकार ऐसे ही रखना है और चिंतन भी करना है, तो वो एक ही तरह से हो जाता है, अहम वृत्ति से ही वो हो सकता है, ये अखंड आकार वृत्ति से चिंतन करना। तो निर्विकारतया वृत्ति ही ब्रह्माकारतया पुनः वृत्तिम विस्मरणम सम्यक। आहा, बार बार ब्रह्माकार बनाने की जब आपको जरूर नहीं पड़ती है, वृत्ति का विस्मरण हो जाता है, सिर्फ मेरे अहम का ही याद रहता है, स्मरण रहता है, स्मृति रहती है, समाधि ही ज्ञान संगमित, ये ज्ञानियों की समाधि है। इस ज्ञानियों की समाधि तक पहुंचाने का ये स्वल्प अल्प निर्दोष प्रयत्न हमने किया है, ऐसा पुष्पदंत जी कहते। इसलिए सावधान तया सुनो, सावधान चित्त से पढ़ने से जो भूतपति महादेव जी है वो प्रसन्न होते हैं। ऐसे ही महादेव स्वरूप परमात्मा गुरुजन जो भी कुछ हमने श्रवण किया उससे ये सब कुछ यानी मेरा पूरा मेरे द्वारा यानी हम सबके द्वारा वाणी में से, रूप में से, चक्षु में से निकले हुई सब हमारी वृत्ति परमात्मा के प्रसन्नता का कारण बने, ऐसी यहाँ प्रार्थना है। और वो कब बन सकती है? जब परमात्मा के प्रत्यर्थ ही कर्म करे। परमात्मा के प्रत्यर्थ याने उसमें उपनिषद का जो वाक्य है वो आपके लिए जरा जरूरी है, काम का है, इतना बता के हम समाप्त करेंगे। उपनिषद का क्या वाक्य है? भाई हमको कैसे पता लगे कि परमात्मा के लिए प्रत्यर्थ है? तो उपनिषद ने बताया है, श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यम एतत् तम सौपरित्य विविनक्ति धीराहा। क्या कहा है भाई? श्रेय और प्रेय ये दोनों चीज आती है सामने। कोई भी प्रारब्ध वशात कर्म भोग आ गया ना सामने, कर्म भोग किस प्रकार आएगा? तो बोले शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये पांच प्रकार से, ये पांच प्रकार का रूप लेके हमारे प्रारब्ध वशात भोग आके सामने खड़ा रह गया। हाँ, ये भोग व्यक्ति के रूप में भी आएगा, वस्तु के रूप में भी आएगा, परिस्थिति के रूप में भी आएगा, ये भोग आके खड़ा रह गया। अब सोचना है कि इसको एंटरटेन करने में मैं ज्यादा प्रपंची बन जाऊंगा, मैं ज्यादा विषयी बन जाऊंगा, परमात्मा का विस्मरण हो जाएगा, ये सामने वाला व्यक्ति मात्र प्रपंच करता है, मात्र सुख भोग है, इसके अंदर परमात्मा को प्राप्त करने की कोई चेष्टा है और दिखे कि इसके अंदर परमात्मा को प्राप्त करने की चेष्टा नहीं है, क्या इस व्यक्ति को मिलने से मैं ज्यादा चंचल हो जाऊंगा? मैं जितना साधन कर रहा हूं कि एक घंटा भी आ रहा हूं, क्या वो भी छुड़ाने वाला ये व्यक्ति है? ये सोच लो और जवाब हां आए तो तुरंत वहां से निकल जाओ। किसी का भय नहीं रखना। क्या भय रखना है? वो है संभालने वाला, किसी को पकड़ने छोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जवाब ना आया कि नहीं, इससे मेरा श्रेय कर्म तो नहीं होने वाला है, ये प्रेय कर्म होने वाला है, और जितना परमार्थ मैं कर रहा हूं ना वो भी छुड़ाने वाला है ये व्यक्ति, तो वो व्यक्ति को छोड़ दो। समझ में आया? ये श्रेय प्रेय शब्द रूपी विचार आया, भाई ये शब्द मुख में से निकालने से मेरी वृत्ति श्रेय वाली, मैं परमात्मा के नजदीक जाने वाली हूं या परमात्मा से दूर जाने वाली हूं, मैं प्रपंच बनने वाली हूं, हाँ समाज ही मेरे भीतर जाने वाला है, जवाब हां आया तो मुख में से वो वाक्य नहीं निकाले। ये दृश्य देखने से मेरी वृत्ति चंचल होने वाली है, विषयी होने वाली है या परमार्थ में जाने वाली है, जवाब हां आए तो वो चीज देखना, वो चीज खाना, वो चीज पहनना, वहां जाना। पहले सोच लीजिए कि आपकी भगवत आकार वृत्ति इधर से उधर कभी भी ना हो। व्यक्ति, वस्तु और परिस्थिति हर क्षण आपके जीवन में आते रहते हैं, श्रेय और प्रेय का विचार उनको नहीं करना है, हमें करना है। और हम दोष किसको देते हैं? वो व्यक्तियों को देते। देखिए, मेरा तो समाज, मेरे व्यक्ति, मेरा तो कुटुंब भी ऐसा है ना कि मैं हमको प्रपंच में ही खींच जाते हैं। फॉल्ट डज नॉट लाई विद देम, फॉल्ट लाइज विद मी। आपको पता लगना चाहिए कि कैसे मैं प्रपंची बन रहा हूं, कैसे मैं घसीट रहा हूं, तो वहां से बंद आपको करना है। उनका फॉल्ट नहीं है। उनको दो उपदेश देने की भी दूसरी गलती साधक क्या करते हैं कि थोड़ा सुन लिया और उपदेश देने लगते हैं। अरे, उन्होंने वो प्रयत्न किया, यहां आके सुनने की चेष्टा की है। हाँ, रेडीमेड किसको पचता है? रेडीमेड नहीं, रेडीमेड तो भगवान के दर्शन भी रेडीमेड नहीं पचते हैं। कैलाश मानसरोवर जो कोई वो हेलीकॉप्टर में जाता है, मरण प्राय हो जाते हैं। हाँ, मेनी पीपल हैव डाइड, सीधे चले गए, एक्लाइमेटाइजेशन नहीं हुआ। नेपाल से जाके सीधे जाना है तो जाइए, हर्ज नहीं है, पर क्या है, डेंजरस तो है। यहां से इतना प्रयत्न करके आप गए, तो क्या हम अच्छी अच्छी बातें सुनी तो हमें नहीं बतानी है? आपको बतानी है, पर किसको बतानी है? जो ये प्रेय मार्ग को पसंद करता है उसे बतानी है। क्यों क्यों ऐसा कहते हैं आप? कृष्ण परमात्मा ने कहा है शिष्य या गुरु, अरे शिष्य या पुत्र, ये दोनों नहीं है। तो ये बात, हे अर्जुन, आप ये जो शुद्ध विद्या जो मैंने दी है, ब्रह्म विद्या जो दी है, वो ब्रह्म विद्या किसी को नहीं देना। ये ब्रह्म विद्या जो आप यहां से सुन रहे हैं, उसका सदुपयोग मात्र आपके लिए ही करना, आपका चित्त शुद्ध करना, आपको अधिकार बनने के लिए ये ब्रह्म विद्या काम लगेगी। अन्यथा दूसरे को कहने की चेष्टा मत करना, वो नष्ट होती जाएगी, आपको पता ही नहीं लगेगा कब हम जीरो पे आ गए। हाँ, तो बहुत ही सावधानतया आप देखिए। एक अंतिम बात मैं कर दूं, आप ऐसे बन जाइए, देखिए, किसी का अच्छा करने के लिए शरीर से नहीं दौड़ना है, कष्टदायक है। थोड़े साल दौड़ सकेंगे, मन से किसी का सोच सकेंगे, पर मन भी हो जाता है, शिथिल हो जाता है, बुद्धि भी क्षीण हो जाती है। तो क्या करना है? किसी का अच्छा करना ही है तो क्या करना है भाई? आप ऐसे हो जाइए, आप वो परमात्मा, वो ब्रह्म तत्व को ऐसी क्षण ऐसे प्राप्त कर लीजिए कि आपका स्मरण भी कोई करेगा और उद्धरण हो जाएगा उसका। द्रौपदी जी ने स्मरण मात्र किया ना, पर कृष्ण परमात्मा कैसे थे? इतने महिमावान थे, इतने ब्रह्म से भरे हुए थे, इतने सच्चित आनंद में थे, एक लेश नहीं था संसार का। तो नाम लेने से कोई उद्धरण हो जाता है, तो आप ऐसे बन जाइए ना, यू हैव द कैपेसिटी। आप यही क्षण किसी का भला चाहते हैं तो कोई हमारा नाम ले और उसका काम हो जाए, ऐसे बन जाओ। हाँ, ये बड़ी से बड़ी सोशल सर्विस है, ये बड़ी से बड़ी काम हम कर सकते हैं। तो हमारा जो गंतव्य है, पहुंचना कहाँ है, वो परम तत्व तक, यही गंतव्य रख के ये सब स्तुति है, स्तोत्र है, पाठ है, ज्ञान है, ये न के न प्रकारेण हमारी वृत्ति भगवद्मयी बनी रहे, ऐसी ही परमात्मा और गुरुजनों से हम प्रार्थना करते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।